नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
सर्वप्रथम इस मांगलिक जो श्लोक कहा गया है उसकी व्याख्या की ओर दृष्टिपात करते हैं। समंत भद्रम निखिलात्म बोधनम, इस ऊपर जो श्लोक दिए हैं संभव है ये पन्नालाल जी के हैं। हाँ, राष्ट्रभाषा लिखी तो राष्ट्रभाषा तो उस समय थी। ये समंत भद्रम है ना, ये टीकाकार का है। समंत भद्र जो कि निखिल आत्मा के बोध के लिए कारणभूत हैं, ऐसे जिन जो कि उनको नमस्कार करते हैं, अखिल कर्म शोधनम, ये जिन कैसे हैं, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के शोधन के लिए इन्हें दूर करने के लिए कारणभूत हैं, और जितने भी आत्मबोध हैं वो सारा सारा उनके माध्यम से प्राप्त होता होता है। आ समंतात भद्रम इति समंत भद्रम, कि सब चारों तरफ से मैंने जिनका जीवन भद्रमय है ऐसे जिनको प्रणाम में नमस्कार करके रत्न करंड के परम भव्य प्रतिबोधना करम निबंधनम करोमि। रत्न करंडक, देखो इन्होंने भी शब्द दिया, रत्न करंडक में जो कि भव्यों के प्रतिबोधन के लिए आकर का काम, बोध के आकर का काम करता है, ऐसे इस रत्न करंडक में निबंधनम परम करोमि, इसको मैं रखने का प्रयास करता हूं। श्री समंत भद्र स्वामी रत्मी रत्नाना रक्षणोपाय भूत रत्न करंडक प्रख्यम सम्यक दर्शनादि रत्नानां पालनोपाय भूतम रत्न करंडकाख्यम शास्त्रम कर्तुकामो। इस प्रकार स्वामी समंत भद्र स्वामी जी रत्नों के उपाय भूत या रत्नों के रक्षण के उपाय भूत जो रत्न करंडक नाम का, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इनके पालन के उपाय भूत यह रत्नगण श्रावकाचार है। देखो शान रखो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का यदि पालन करना चाहो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का संरक्षण करना चाहो तो यह रत्नगण श्रावकाचार का हमेशा हमेशा पाठ कर लेना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ इतना नहीं एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया। कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि छोटा सा ग्रंथ है इसको क्या पढ़े, ये तो बाल बोधाय कथ्यते, ऐसे कहते हैं। हमें समझ में नहीं आया समंत भद्र महाराज जी की कृति और छोटी हो जाए ये कम समझ में नहीं आया। समंत भद्र को समझने के लिए छोटी की विद्वान चाहिए, छोटी कृति नहीं है ये। हाँ, ये बहुत ही बड़ी कृति है। आज इसका यदि हम बोध प्राप्त कर लें तो जहाँ जिस किसी भी देश में आप चले जाएं सुख और शांति का अनुभव कर लेंगे, और ये यदि सूत्र हमारे से वंचित हो जाते हैं तो दिग्मूढ़ हो जाता है। आज का युग दिग्मूढ़ इसलिए हुआ, बहुत सारी चीजें अर्थ के विकास के लिए जो कारण है उसका आलोड़न तो करने में लगा हुआ है, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र इसके विकास एवं उत्पत्ति के कारणभूत रत्नगण श्रावकाचार्य को कभी याद ही नहीं करता, इसलिए दुख का शांति का रोगों का आदि आदि का अनुभव करता है। स्वामी समंत भद्र महाराज विश्वास के साथ आत्मविश्वास कहते हैं इसका अनुपालन करने वाला निश्चित रूप से इसको कहे तो सुख भूमि आगे जाकर के कहेंगे। ऐसे स्वामी समंत भद्र निर्विघ्न रूप से इस शास्त्र की रचना हो और इसका फल हमें जो साक्षात अज्ञान का नाश अथवा उपासना का अध्ययन यानी चारित्र का पालन करने के लिए शक्ति का विकास हो अथवा प्रादुर्भाव हो, इस दृष्टि से इसके पूर्व में मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक देते हैं। उसमें उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। भगवान के विशेषताएं इस कारिका में बताई गई हैं। मैं सर्वप्रथम वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। अब देखो नमः शब्द आया। आप लोग बोलते हैं प्रतिदिन नमः का अर्थ क्या होता है? नमोस्तु 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 होता है। नमः का अर्थ नमोस्तु होता। कई व्यक्ति ने ये कई लोगों ने पूछा महाराज नमः का अर्थ क्या होता? नमोस्तु होता है। और नमोस्तु आप कैसे करते हैं? हे स्वामिन हे स्वामिन हे स्वामिन नमोस्तु 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 नमः अस्तु नमस्कार हो। अब ये जो है रूढ़ पड़ता पड़ता कि बच्चों के लिए क्या सिखाया जाता? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब देखो यह हो गया गलत जैसा लगता आप लोगों को। नहीं ते मैंने तुभ्यम तुभ्यम ते है नमस्ते। अब वो नहीं इसलिए नहीं हुआ कि चूंकि विसर्ग के सामने यदि तवर्ग आ जाता है तो तवर्ग में भी कि अघोष आ जाते हैं उसका वो नहीं होता। ओंकारियोर मध्य सूत्र नहीं लगता इसलिए नमोस्ते नहीं बना नमस्ते बना। और चूंकि त आने से विसर्ग का स हो गया तो तुम्हारे लिए यानी आपको नमस्कार हो। ये इसका अर्थ है। नमोस्तु कहो और नमस्ते कहो बात एक है। अब यह कैसे करें नमस्तु नमोस्तु? ऐसा नहीं किया जाता किंतु भाव से करना एक बात नमोस्तु। ऐसा भी नहीं करते किंतु यूं करते मस्तक नमाना चाहिए। नमाने के लिए यह नमस्कार आया। वचन संबंधी नमन होता है, काय संबंधी नमन होता है और भाव मन संबंधी नमन होता है। जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं भावों में उनके प्रति आदर भाव विनीत भाव रखे ये मन का नमस्कार हो जाता। वचनों से वचनों में भी कोमलता के साथ विनीत शब्दावली के साथ उस प्रकार नमस्कार करें यह शाब्दिक नमस्कार माना जाता है। और कायिक नमस्कार एक प्रकार से हाथ जोड़ना। अब उस समय तो हाथ तो जोड़ नहीं सकते हम हाथ में तो कलशी रहती है तो वो ठीक है निश्चित बात उस समय हाथ तो नहीं जोड़ सकते लेकिन हाथ में वह ले करके नम्र भाव तो किए जा सकते हैं। अब देखो नमस्कार यदि यूं करके बैठ खड़े हो जा नमोस्तु 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 ऐसे के वास तो कोई भी ब्रह्मचारी भी जाकर के खड़े नहीं हो सकेगा। मुनि महाराज एलक जी आरिकाएं चिल्लक जी तो बहुत दूर की बात है उनके पास सामने ब्रह्मचर्य भी कोई जाकर के खड़ा नहीं होगा कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। उनके लिए आपको बार बार विनीत भाव से कहना होगा कि ब्रह्मचारी हो तो उसके लिए दे क्या बोलते हैं आप लोगों के लिए है वंदना त्यागी जी वंदना आप चलना है आपको चलना मैं आता हूँ। अच्छी बात है एक बार तो निमंत्रण हो जाता है फिर इसके उपरांत आमंत्रण हो जाता है इसका अर्थ आपकी यहाँ की बुलौआ और चलौआ होता है। बुलौआ बुलौआ मतलब एक बार बुला करके आ जाते हैं फिर आप तो चलना है आपको। हाँ सुबह बोला था हमने अब तो आपको चलना है तो चलौआ बुलौआ और चलौआ ये दो के साथ ये मतलब ब्रह्मचर्यों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। हमने तो कह दिया था तीन चार दिन के पहले ऐसा कैसे बुकिंग होने लगा अच्छा अच्छा ठीक व्यवहारिकता जनपद सत्य है जनपद सत्य इस प्रकार यदि चलता है तो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये बुलौवा चलो का अर्थ ये है कि आपको उसके प्रति कितना भाव है और उस भाव के करने से कितनी कर्म निर्जरा हो रही है, आप ये ध्यान लो। एक बार में कितनी कर्म निर्जरा होती है, तो एक सुबह जाकर के कह करके आना ये तो बुलौवा हो गया, फिर इसके उपरांत याद रखना 10 बजने को है, स्वयं नहीं जाते हैं तो दूसरे को और चलो हुआ जाओ ले आओ उनको। इससे क्या होगा? उसके मन में एक विश्वास रहेगा आपके प्रति कि हाँ ये त्याग और तपस्या वृत्ति के प्रति आदर रखते हैं, और इसी के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और किससे होती है? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, क्रियाएं जितने भी हैं उन क्रियाओं के द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। बार बार नमस्कार करना, बार बार विनीत भाव रखना, बार बार आदर प्रस्तुत कर देना, इससे अपने भाव हल्के होते हैं, अहम भाव जो लगता है वो दूर हो जाता है और दूसरे का बड़प्पन इससे व्यक्त हो जाता है। इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से हमारे जो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्र उज्ज्वल बनने वाले हैं, अन्यथा नहीं। विनय सर्वप्रथम रखा है, रावत के पास 7 गुण आते हैं या आने वाले हैं, अभी तो सम्य दर्शन की बात कहेंगे पहले, फिर बाद वो आएंगे। तो नमः का अर्थ मन वचन का है, मनसा वचसा वपुषा, ये नमस्कार होना चाहिए। किनके लिए नमस्कार कर रहे हैं? श्री वर्धमान आए, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार कर रहे हैं। वो कैसे हैं वर्धमान स्वामी? श्री मैंने संपदा होती है, श्री मैंने लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी लक्ष्मी और एक भीतरी लक्ष्मी। बाहरी लक्ष्मी जो समोसरणाधिक तु हैं और दिव्य शरीर परम अवतारिक शरीर आदि आदि, ये बाहरी लक्ष्मी मानी जाती है। और अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय वीतरागता, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख वीतरागता आदि आदि, ये अंतरंग लक्ष्मी मानी जाती है। उनसे जो वर्धमान हुए हैं, वर्धमान शब्द की उत्पत्ति के लिए ये कहा गया है, अव आसमंतात रिद्धम मानम यसे कि तस्मै वर्धमान आए। जिनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त, रिद्ध मैंने वृद्धि को संपन्नता को प्राप्त है, यानी केवल ज्ञान में जिसका ज्ञान ढला है, उसके लिए मैं नमस्कार करता हूं। इसमें 24 तीर्थंकर को भी नमस्कार किया गया है, यानी जिनका ज्ञान इस प्रकार जो है वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, ऐसे 24 तीर्थंकरों के समूह के लिए भी नमस्कार। वे कैसे हैं? निर्धूत कलिलात्मा तस्में, जिन्होंने कलिल मैंने पाप, कलिल मैंने घातियां कर्म, घातियां कर्मों को जिन्होंने धो दिया, उस घातिया कर्म रूपी मल को जिन्होंने अच्छे ढंग से वीतरा भावों के द्वारा धो दिया है, शुक्ल ध्यान के द्वारा समाप्त कर दिया है, ऐसे परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार होता है। वो उनकी अब विद्या की बात कही जा रही है, विद्या है ना उनका केवल ज्ञान। महाराज बार बार कहा करते थे कि कुंद को ज्ञान बहुत प्रिय है, तो समंतभद्र महाराज को विद्या बहुत प्रिय है। विद्या बहुत प्रिय है, बहुत विद्या के नाम लिखेंगे आगे आगे तक। ये रत्न श्रापाचार्य में 3-4 बार विद्या शब्द का इन्होंने हैं। हाँ। ना अंतर तो शाब्दिक अंतर तो है, वो नपुंसकलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और भी कैसे, ये विद धातु से है, वह ज्ञान धातु से है। हाँ, विद्या संसार में रहती है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काष्ठागत सुख विद्या विभुवम विमलम भजंत दर्शन पूटा, ऐसे जाकर के आगे काष्ठा तो सीमा तक पहुंचने वाली विद्या होती है, जब तक अविद्या साथ रहती है, सूक्ष्म भाव साथ रहता, तब तक विद्या अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाती और वह संसार दशा में अविद्या का रूप धारण कर लेती है। इसको ज्ञान अज्ञान के रूप में परिणत होता, विद्या अविद्या के रूप में परिणत हो जाती। जिनकी विद्या की विशेषता स्वामी समंतभद्र महाराज ने इस उत्तरार्ध में किया, जिनकी विद्या यद विद्या यस्य विद्या मैंने यद विद्या, जिसकी विद्या दर्पणायते दर्पण के समान आचरण करती है, यानी जिनके विद्या रूपी दर्पण में लोक और अलोक दोनों जो हैं प्रतिबिंबित हो जाते हैं, लोक और अलोक जिनकी विद्या रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, यानी तीन लोक को अलोक सहित जानते हैं। इतना ही हो गया? नहीं, स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने इस दर्पणायते इस उदाहरण के माध्यम से वर्धमान स्वामी की वीतरागता का भी कथन किया है। वीतरागता का कैसे कथन किया है? दर्पणायते इसके माध्यम से किया है। दर्पणायते दर्पण जिस प्रकार पूरे के पूरे अपने सामने आए पदार्थों को प्रतिबिंबित करता हुआ उन पदार्थों के अनुरूप परिवर्तन नहीं करता, यानी कोई रागी आकर के देख लेता है दर्पण को, वह स्वयं राग का अनुभव तो करेगा लेकिन दर्पण कभी भी राग का अनुभव नहीं करेगा और दर्पण कभी भी उसके ऊपर अभिमान भी नहीं करेगा। सामने वाला व्यक्ति भले ही राग द्वेष से मलिमस हो किंतु दर्पण कभी भी कोई भी उठा दे दर्पण, ऐसा नहीं कहते दर्पण तुम्हारा मुख ठीक नहीं है हम तो तुम्हें नहीं दिखाएं, ऐसा नहीं। दर्पण तो कोई भी वस्तु आ जाए, उसी प्रकार वो भी जो कोई भी प्रतिबिंबित होता है उनके ज्ञान में उसको जान लेते हैं लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए दर्पणायते इस विशेषण के द्वारा दर्पण के एक जानने की या प्रतिबिंबित करने की एक क्षमता का उन्होंने वर्णन नहीं किया किंतु दर्पण दर्प न, यानी जिस प्रकार दर्पण में दर्प में राग द्वेष मोह मद आदि नहीं होते, इस दर्पण का देखो बड़े सेठ के हाथ में मैं हूं ऐसा दर्पण कभी भी नहीं कहता। उसी प्रकार कोई गरीब आकर के उठा ले और उस गरीब के समान वो भी दीनहीन हो जाए दर्पण, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार निर्विकार निर्विकल्प उनका ज्ञान बना रहता है, इसलिए दर्पणायति कहा। तीन लोक सहित अलोक भी जिसकी विद्या रूपी दर्पण में समाहित हो जाते हैं, प्रतिबिंबित हो जाते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को या तीर्थंकरों को मैं नमस्कार बार बार करता हूं। अब देखो एक बात और भी समझना है, यहां पर हम महावीर भगवान वर्तमान में तो है ही नहीं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, इससे अपने को क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि उनके स्मरण करने से उनके गुणों की प्राप्ति भी हमें हो जाते हैं। तो दो गुणों के लिए तो इन्होंने विशेषण दिए और एक गुणी के लिए विशेषण दिए। एक गुणी के लिए क्या? वर्धमान आया, ये गुणी के लिए कहा गया, लेकिन बाकी जो हैं वे कैसे? निर्धूत कलिलात्मा, उनके कार्य कैसे हैं? उन्होंने पाप को धो दिया तो पाप को यदि धोना चाहते हो, उनके अनुरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो उस वर्धमान स्वामी को नमस्कार करो। वो नमस्कार कैसे करना चाहिए? मन वचन और काय से करना चाहिए। हाँ, दार्शनिक पक्ष कौन से दार्शनिक? दर्शन का अर्थ दर्पण होता, दर्पण का पक्ष तो बता ही दी है? ये कोई है ही नहीं, दर्शन तो दर्शन है, दर्पण है, उसमें अभिमान की बात नहीं हो, बस इतना ही। आगे आएगा प्रतिपादन, अभी यहाँ पर सर्वज्ञ कुछ नहीं बताया उनके देखो ये ध्यान रखो, दर्पण के समान यहाँ पर कर्तृत्ववाचक नहीं बताया गया है, जानते ही नहीं बताया, जाना जाता है, सर्वज्ञ में जाना नहीं जाता, सर्वज्ञ जानता है और इसमें जाना जाता है, इसमें कर्म की विशेषता है, सारे पदार्थ उनके अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसी विद्या है, ऐसा उनका ज्ञान है, उनके लिए हमारा नमस्कार है। और दूसरी बात देखना है कि एक घंटे के लिए दिया गया है, एक श्लोक हो जाएगा तो दर्शन पक्ष जो है हमारा कौन हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रहे। अब नमस्कार करने के उपरांत, नमस्कार करने के उपरांत बहुत कोमलता के साथ यहाँ पर विषय प्रस्तुत करते हैं, ये दर्शन पक्ष इसमें आएगा नहीं, यदि आता है तो सम्यक दर्शन पक्ष आएगा, यहाँ न्याय नहीं आएगा, तो अन्याय की बात भी नहीं कही जाएगी, लेकिन आचरण की बात और सम्यक दर्शन की बात कही जाएगी जो इस पथ पर आना चाहते हैं उनके लिए। अब क्या नमस्तु करने के लिए गए, ये रत्नगण श्रावकाचार्य लिखना था, अब उस रत्नगण श्रावकाचार्य में क्या कहेंगे हम वो बता रहे जा। देशयामी समीचीनम् धर्मम् कर्मणि भर्हनम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। हाँ ये ध्यान रखना, इसका पाठ आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि कंटस्थ करने के उपरांत भी यदि शब्दों में जो अर्थ भरा हुआ है उसकी यदि गंध आप लेना चाहें तो धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, कभी आप भोजन करते हैं जल्दी जल्दी भोजन करेंगे तो आपको उसको स्वाद आएगा, बोलो। हाँ क्विनाइन की गोली का स्वाद आता है, अरे वो तो यूं ऊपर से उसको छोड़ दिया जाता है तो रस ही नहीं आएगा, आ भी जाता है तो उसके ऊपर सुगर कोटेड करके अलग कर देते। तो जितने देर तक जिह्वा के ऊपर वह रहेगा उतने देर तक आपको उसका स्वाद आएगा। तो उसी प्रकार शब्द एकदम न छूटे, क्योंकि शब्दों के भीतर का जो अर्थ है उसका स्वाद लेना चाहो, उसकी गंध का यदि पान करना चाहो तो थोड़े धीरे धीरे रखो, बहुत धीरे तक भी नहीं रखना चाहिए, आगे के संबंध भी जोड़ना अनिवार्य होता है। तो यह अनुष्टुप श्लोक के माध्यम से पूरे का पूरा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा इसकी टीका नहीं पड़ी, अच्छा हमने पूरे पूरे भाव तो कर दिया। नमस्कार, नमस्कार है अस्तु, नमस्कार कस्मै किसके लिए, श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए, कैसे वर्धमान स्वामी, अंतिम तीर्थंकराय, वे वर्धमान स्वामी इस युग में इस काल में जो 24 भगवान हुए हैं उनमें से अंतिम हैं, तीर्थंकर समुदाय आय वाह, अथवा तीर्थंकरों के समुदाय को मेरा नमस्कार। कैसे हैं वो, कथम अवसमंतात रिद्धम परम अतिशय प्राप्तम मानम केवल ज्ञानम यस्य। अब उपसर्ग लगाएं, पहले वर्धमान शब्द की उत्पत्ति के लिए वर्धमान शब्द कैसा बनता है तो इसके लिए बता दे, पहले सर्वप्रथम अव उपसर्ग लगाया जाता है, अव का अर्थ होता है समंता, यानी चारों तरफ से सब तौर से, रिद्धम, रिद्धम का अर्थ रिद्धि प्राप्त, यानी अतिशय को प्राप्त हो जाना, इसका नाम रिद्ध है, अतिशय को प्राप्त जिसका ज्ञान, मान मैंने ज्ञान होता है तो बोध होता है, तो जिसका ज्ञान अतिशय को प्राप्त हुआ, मैंने इस प्रकार का अतिशय ज्ञान में अन्यत्र नहीं मिलता, ऐसा ज्ञान जो केवल ज्ञान, उस ज्ञान से जो युक्त हैं उनका नाम वर्धमान माना जाता है। वर्धमान स्वामी का महावीर का नाम बहुत सारे हैं, सन्मति भी है, वर्धमान है, वीर हैं, महावीर हैं, अतिवीर हैं, नाथान्वय हैं, आदि आदि बहुत सारे हैं। उसको आप पढ़ लो, नाम माला भी थोड़ा सा पढ़ लो। अथवा समांच सभी कीर्तन करा। वर्धमान जिसका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता। अब देखो वर्धमान कैसा बना। अब अति यो अल्लुप, देखो अवात्योरल्लुप इति अव शब्द अकार लोप और अव और अपि, इन दो शब्दों में आया हुआ जो अ अकार है उस अकार का लोप होता इस सूत्र के द्वारा। अव में से अ निकल गया तो वह रह गया, तो वह और रिद्धि को प्राप्त वर्ध, इसको रिद्ध से बना दिया। श्रिया बहिरंग या अंतरंग या च समोचरण अनंत चतुर्थ लक्षणों उपलक्षित वर्धमान श्री वर्धमान इति पते। बहिरंग और अंतरंग समोचरण आदि अनंत चतुर्थ आदि लक्षणों से उपलक्षित जो वर्धमान है वो या वर्धमान यहाँ पर व्युत्पत्ति के अपेक्षा से माना गया। तस्मे उनको कथम भूता है निर्भूत कलिलात्मने निर्दूतम स्फोटितम स्फोटितम कलिलम ज्ञानावरणादि रूपम पापम आत्मन कि जिसका वह कलिल यानी ज्ञानावरणादि जो पाप है अब उसका विस्फोटन हुआ है मैंने दूरी कृतम आत्मनाम वा भव्य जीवाना ये न अथवा जिसके माध्यम से अनेक भव्य जीवों के अपने पाप दूर हो गया है ऐसे वर्ष निर्दूत कलिलात्मा तस्मे नमा ओ निर्दूत कलिलमात्मा माने जाते हैं उनके लिए मेरा नमस्कार। जिसकी विद्या केवल ज्ञान लक्षणा किं करोति क्या करती है दर्पणायते दर्पण इव आत्मानम आचरति दर्पणायते दर्पण के समान आचरण करने वाली जिनकी विद्या है वो दर्पणायते माना जाता है। केशव किसके लिए वह दर्पण का काम करे त्रिलोकानां त्रिभुवनानां तीन भुवन के लिए वह दर्पण का काम करे और कैसे त्रिभुवन भूत कथम भूताना सालोकानां अलोक आकाश सहितानां अलोक आकाश सहित तीन लोक के लिए जो दर्पण का काम करती है ऐसी विद्या अयम अर्थ यथा दर्पण निजेन्द्रिय अगोचरस्य मुखादेह प्रकाशक जिस प्रकार दर्पण अपने नाक कहाँ है ललाट क्या है क्या लगा हुआ है ये देखने में नहीं आ रहा है मुखादिक के अभिव्यक्ति के लिए दर्पण जैसा काम करता है उसके अनुसार तथा सालोक त्रिलोकानाम तथा विदानाम तेज विद्या प्रकाश का। अब देखो एक प्रकार से हम दर्पण का अर्थ थोड़ा सा डाइवर्ट करके ले लेते हैं तो ये भी लिया जा सकता जिनका दर्पण यानी जिनका दर्शन आज दर्पण का काम कर रहा है जिनका दर्पण में जिनकी विद्या क्या है दर्पण के समान में दर्पण का अर्थ आदर्श होता दर्शन होता है। विश्वलोचन कोश में दर्पण का नाम दर्शन भी है आदर्श भी है और दर्शन भी है तो वह दर्शन महावीर भगवान का तीर्थ चल रहा आज दर्पण के अनुसार काम कर रहा तीन लोक में कहां कहां क्या क्या है आप महावीर भगवान के दर्शन में पढ़ लो सुन लो देख लो निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार दर्शन के तीन भेद हो गए तीन अर्थ हो गए। कहां पर प्रकाश का इति प्रकाशिका इति यस्य विद्या सालोकाना त्रिलोकाना प्रकाशिका इति कथिता इयम् टीका वर्तते। जिस प्रकार लोक कहा है उसी प्रकार भुवन कहते हैं ये तीन भुवन में सात ऐसे बोलते हैं तीन लोक को तीन भुवन कहा। अत्र च पूर्वार्धेन भगवत सर्वज्ञतो उपायः उत्तरार्धेन च सर्वज्ञता उक्ता। यहाँ पर कि पूर्वार्ध के द्वारा सर्वज्ञता का उपाय और उत्तरार्ध के द्वारा सर्वज्ञता कही गई है। टीका में आई महाराज, ये ध्यान रखना। देखो बात ऐसी है कि टीका टिप्पणी करना चाहो तो बात अलग है, हम कह देते हैं, लेकिन हमने तीन अर्थ निकाल करके आपको दे दिए। अच्छा विशेषताएं ठीक है, आपके लिए हमने चालू नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचारी गण बैठे हैं, आपके लिए तो मूलाचार को याद बोर हो जाए, बोरी है वहाँ पर।
चलो हो गया,
अब आगे कह रहे हैं वो देखो, आपकी सारी सारी जिज्ञासाएं क्रम से पूर्ण होगी, आपके लिए जो शब्द दिए हैं वो आपके लिए आएगा, आप मैंने प्राप्त होता है एक प्रकार से, आप मैंने प्राप्त होता है, आप मैंने मेहमान होता है, दक्षिण में जो आप लोग इधर क्या बोलते पाउने, दक्षिण में जो आप लोग इधर क्या बोलते पाउने पाउने, हाँ जो पावन होते हैं उनका नाम पाउने कहला जाता है, इसी प्रकार आगे कहा जाएगा, क्योंकि जिस समय आएगा ना वो विषय, वो भी तो इस समय छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मेरे कहना। अब मैं समीचीन हो गए ना, ठीक है, अब मैं उस धर्म का कथन कर रहा हूं, उसकी चर्चा कर रहा हूं, जिसको मैं धर्म कहता हूं, जिसको मैं धर्म कहता हूं, है वह कैसे है, समीचीनम धर्मम। समीचीन का अर्थ प्रामाणिक होता है, समीचीन का अर्थ प्रामाणिक, हमारे उद्देश्य को हमारे प्रयोजन को जो प्राप्त करा दे पूर्ण करा दे उसका नाम समीचीन माना जाता है। जो कारण समीचीन होता है तो वह समीचीन कार्य को सिद्ध करता है, जो धर्म समीचीन होता है वही निश्चित रूप से हमारी भावना को पूर्ण करने वाला होता है। तो कर्म निवारणम, वह धर्म जो कर्म को नष्ट भ्रष्ट करने में सक्षम होता है और जो उत्तम सुख में संसारी जीवों को संसार रूपी दुख के गर्त से निकाल करके रख देता है, धरती इति धर्म धर देता है, बुंदेलखंड में जो धर दे उत्तम सुख के स्थान पर इत से निकाल कर इत धर दे उसको बोलते धर्म, ये निरुक्ति परक अर्थ है इसका। किनको धर देता है, संसार रूपी जीवों को, संसार में भटकने वाले जीवों को संसार के दुख रूपी गर्त से निकाल करके उत्तम सुख के स्थान पर धर देता है, रख देता है, यानी सुखी बना देता है, उसका नाम धर्म है और वह समीचीन होना चाहिए। प्रत्येक के पास धर्म होते हैं अपने अपने में, किंतु जो एक धर्म कर्म को बांधने वाला होता है और एक धर्म कर्म को काटने वाला होता है, जो एक दुख देने वाला होता है और एक सुख देने वाला होता है, एक शुरुआत में तो सुख जैसा महसूस कराने वाला होता है और एक बाद में बहुत सारा दुख देने वाला होता है, एक शुरुआत में दुख जैसा लगता है किंतु उसका परिपाक बहुत सुखमय होता है, उसी का यहाँ पर धर्म इस रूप में व्याख्यान किया जा रहा है। एक दूसरा अर्थ और निकल सकता है, निकालना चाहे तो हम निकालो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु थोड़े से रख ले तो बृह धातु जो है ये वृद्धि के अर्थ में भी हो, बृहत जो शब्द बनता है वो इसी का परिणाम है और यही समन्तपद स्वामी आगे जाकर के तीन गुणवृत्तों के लिए अनुना अनुब्रहणात गुणा नाम, ये कहा वो प्रोहण कहा। उसी को यहाँ पर यदि हम संकेत के रूप में यदि ले लें तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे वह धर्म जो कर्म कर्म के लिए निश्चित रूप से ब्रहण यानी वृत्ति को प्राप्त करा देने वाला है। कर्म का अर्थ यहाँ पर आठ कर्मों से तात्पर्य न लेकर के किंतु हमारे जो कर्म मैंने कर्तव्य है, कर्तव्य में समीचीनता निश्चिति नियतपना लाने का जो कार्य करता है वही समीचीन धर्म होता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का प्रयोजन शुद्ध किससे होगा कि भीतरी भावों के द्वारा होगा। वह धर्म बाहरी कर्मों में समीचीनता लाने में यानी उनमें निष्ठा लाने में कारण होता है उसका नाम धर्म। वो धर्म यहां पर प्रासंगिक है। कर्म का निवारण करने वाला अथवा कर्म के लिए निश्चित रूप से ग्रहण में विकास रूप देने वाला होता है। क्या भिन्न भिन्न उपसर्गों के साथ ये हो सकता है, इसमें कोई अनु था वहां पर अनुग्रहणात्, जैसे बृहत शब्द आया इसमें कहां अनुस्वार आया। मुट का जो प्रयोग होता है, अनुस्वार का जो प्रयोग होता है भिन्न भिन्न उपसर्ग और भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार होता होगा। ये तो अर्थ हमने मुख्य रूप से नहीं निकाला, इस अपेक्षा से कहा एक उपग्रहण होता है एक उपग्रहण होता है। आठ अंग जो आए हैं आपके यहाँ उनमें भी एक उपग्रहण अंग आता है और एक उपग्रहण भी आ जाता है, उपग्रहण भी आ जाता है और उपग्रहण भी आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कर्म के लिए निश्चिति प्रामाणिकता लाने में और उनके विकास में जो कारणभूत होता है यानी आवश्यक आपके तभी आवश्यक माने जाते हैं जब आपके साथ उस धर्म का आधार आप में हो। देशयामि कथयामि, मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, कम धर्मम, धर्म का मैं कथन करता हूं। कथम भूतम तद धर्म, वो कैसा है धर्म, समीचीनम अबाधितम, जो बाधा से रहित हैं। तद अनुष्ठात्री नाम ये परलोके च उपकारकम, जो धर्म का अनुष्ठान करता है, जो धर्म का आधार लेकर के चलता है, जो धर्म को अपने जीवन में स्थान देता है, उनके लिए ये लोक में और परलोक में जो उपकार करता है उसका नाम समीचीन धर्म है। और कैसा है, निश्चिंतवंत भवंत इति आह, भगवान ऐसे हैं वो आगे कह रहे कर्म निवारणम यतो धर्म संसार दुख संपादक कर्मणाम निवारण विनाशक, क्योंकि वह धर्म जो संसार रूपी दुख के संपादन करने वाले जो कर्म है उनके वो विनाशक होता है। निवारण ततः यथोक्त विशेषण विशिष्ट, इसीलिए यह कर्म निवारण यह विशेषण दिया गया है। अमुम एव अर्थम युत्पत्ति द्वारेण अस्य समर्थयमानः संसार इति आ, अब युत्पत्ति के अर्थ में समर्थन करते हुए इसी अर्थ का स्पष्टीकरण आगे किया जा रहा है विशेषण के द्वारा। संसारे चतुर्गति के, संसार कैसा है, चार गतिमय है। कौन सी गति है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, ये चार गति का जो संसार है इसमें क्या है, दुख हानि, इसमें केवल दुख ही कूट कूट करके टसाटस भरे हुए हैं। यहां पर ऐसा नहीं कि सुख मिल जाए, नहीं। अब हम जा रहे थे उस ओर नदी की ओर तो देखा जो गेहूं की खेती सब पूरी पोटी कट गई और कुछ लोग जो हैं उसके दूसरे दिन या उसी दिन कुछ बीन रहे थे, उसको अलग बोलते हैं सिला, बीन रहे थे सिला, सिला बीन रहे थे, सिला बोला थे, सिलाई कहते हैं, सिलो सिलो ठीक है, सिलो सही। अच्छा कुछ बाल ऐसे छूट जाते हैं, उनको वो बीनते हैं, उनके लिए तो वो तो सुख मिल जाएगा, लेकिन संसार में कहीं भी आप कुछ भी बीन लो, वहां पर दुख के ही सिला मिलेंगे आपको। नहीं समझे उसको इधर फिट कर दो, यहाँ पर चतुर्गति के संसारे दुखान्येव, यहाँ पर आप कुछ भी बीनोगे तो सुख नहीं मिलने वाला, कहीं भी कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। किसी भी गति में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, जो आप चाहे आर्यखंड में जाओ, चाहे मिलेंज खंड में जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ सुख देखना चाहोगे तो सुख नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो धर्म ही मिलेगा, वह बाहर नहीं मिलेगा, वह मिलेगा केवल अपने आत्मा में। वो कैसे दुख है, शारीर मानस आदिनी, कोई शारीरिक दुख मिलता है किसी को, किसी को मानसिक दुख मिलता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, कोई सुखी देखे, कोई तन के पीछे से दुख का अनुभव कर रहा, कोई धन के पीछे से दुख का अनुभव कर रहा, कोई मन के पीछे से दुख का अनुभव कर रहा, क्या हमेशा हमेशा दुख ही दुख मिलता है चारों गतियों में। अब ये पूछो महाराज, देवगति में तो सुख है, वहां पर तो नहीं सिगड़ी जलानी पड़ती है, नहीं तो गेहूं लाना पड़ता है, न रेशन का, क्या वो कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रबंध नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात देखो, वहां पर परिवार का भी दुख नहीं रहता, सुन लो तो, विस्फोट तो बहुत दूर की बात है, वहां पर नहीं, वहां पर बच्चे बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं होते, संतान। हाँ ये भी एक प्रकार से दुख है, हैं? स्वतंत्रता, कोई तन दुखे कोई मन दुखे, क्योंकि जो संतान जो है ना नहीं मिलती तो यहां पर दुख है, और मिल जाती है तो दुख है, वहां पर वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए सुख हो जा नहीं, तो जा करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वहां पर भी इससे भी ज्यादा, वहां से भाग नहीं सकते, बैठे रहो वहीं पर, कहां जाएंगे और भटकना है। हाँ तो वह घूमना तो बनेगा नहीं, पर्याय छूट नहीं सकती, ऐसे बंधन हैं, ऐसे बंधन हैं कि हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, जितना मिला है उस सब का जो है देख रेख करते हुए सागरों को मायु तक बैठे रहो, सामने सामने ही। अब इंद्र के जीवन में कितनी नील सची हैं, इंद्राणी होती हैं, वो तो चली गए, मोक्ष भी प्राप्त कर जाते हैं, और फिर भी सौधर्म इंद्र तो वहीं पर आ गई, कल्याणकों में स्वयं का कल्याण तो ही नहीं रहा, ऐसा रहता सागरूप मायु तक बैठा रहना पड़ता है, चारों गतियों में दुख ही दुख भरे हैं, सुख है नहीं, यह तात्पर्य है। अब वह जो समीचीन धर्म कहा, कर्म का निवारक कहा, वह धर्म किमात्मक है, उसका स्वरूप और बता दो, तो आगे के सूत्र में यह कहा जाए। अतः एवं विद धर्म स्वरूपता कानी प्रतिपद्यन्ते इति आह। ये वह धर्म का स्वरूप आपने बताया, कहा वह कैसा है ये हमें बताओ, ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। समीचीन है, धर्म है, जो कर्म को निवारण करने वाला है, तो ये बताओ वह किस रूप में और है। तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। अब भवन्ति नहीं कहा हमने, इसलिए प्रत्येक अक्षर को देख करके उच्चारण करना और सुनना कान से। मेरी तरफ नहीं देखें, किताब की तरफ देखें, और यदि मुझे देखना चाहें तो अचक्षु दर्शन के द्वारा आप देखें। अचक्षु दर्शन आपके पास कान है, कान के द्वारा मेरी ओर देखें और आंख के द्वारा पंक्ति की ओर देखें। दो बार तो कर लें, लेकिन दो बार के साथ साथ तुम लोग इस प्रकार की आदत न रखे, ह्रस्व के साथ ह्रस्व बोलिए। ये नहीं आपको क्या आता है कि ह्रस्व है और दीर्घ बोलते चले जा रहे हैं। हमारे कान तो आपकी ओर है और आपके कान भी मेरी ओर हो और मेरी आंख आपकी ओर हो सकती है, लेकिन आपकी आंख किताब की ओर रहे आप। अच्छा, एक बार और, और मेरी ओर मेरे मेरे आंख आपकी ओर हो तो भी कोई बात नहीं, गुस्सा के साथ भी देखोगे मुझे, देखो नहीं आप ठीक हो जाएगा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि कानी नहीं वहां पर, यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धते। हाँ, आप देखो धर्म का स्वरूप धर्मेश्वराः धर्मं विदुः। धर्म के जो ईश्वर हैं, यानी जिन्होंने अपने आपके जीवन को धर्ममय बना दिया है, जो धर्म के स्वामी बने हैं, या धर्म के जो ईश्वर मैंने आयतन बने हैं, वो ऐसे कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। क्या? सदृष्टि, सद ज्ञान, सत वृत्तम इति, इसे सत सबके साथ लगाना, सदृष्टि सत ज्ञानम सत वृत्तम इति त्रीणि अपि धर्मम विदु। ये तीनों क्या है? धर्म है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राण, मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राण, मोक्ष मार्ग। तो सम्यक यह शब्द जिस प्रकार दर्शन के साथ लगा, उसी प्रकार ज्ञान के साथ लगा, उसी प्रकार चारित्र के साथ लगाने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार दृष्टि के साथ भी सत लगा देना, ज्ञान के साथ भी सत लगा लेना, और वृत्त मैंने चारित्र के साथ भी सत लगा लेना। जिस प्रकार वहां पर सम्यक का अर्थ समीचीन है, उसी प्रकार यहाँ पर सत यह समीचीनता का द्योतक है। इसको धर्मेश्वर धर्म ऐसा कहते हैं, ये पूर्वार्थ हो गया। फिर इसके उपरांत उत्तरार्ध में यदि यह प्रत्यनीकानी, इससे या इनसे जो विपरीत हैं, प्रत्यनीक बोलते हैं, विपरीत मैंने मिथ्या, वे क्या कहलाते हैं? भव पद्धति ही भवन्ति। ये तीनों भव पद्धति मैंने संसार के मार्ग हैं। संसार के मार्ग से हटना चाहें तो समीचीन जो धर्म सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, उसको धारण करो, अन्यथा आपके पास मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो संसार के पद्धति में मार्ग रूप हैं, वो आपको बिना मांगे प्राप्त होंगे।
महावीर
की तू।